है, इसलिए मैं मृत्यु से मैं बच करके मैं जी उठा। तो उस प्रभु का नाम हमको अब स्मरण करना चाहिए। बस वहां से चल करके हरिद्वार चले गए, हरिद्वार में, और वहां पर विधिवत नारायण का जो मंत्र है, षडाक्षर मंत्र, नहीं कितना षडाक्षर,
ओम नमो नारायण,
यह नाम जपने लग गए। जपते जपते जब उनका आयु जब शेष होने को आई, भगवान के वही दूत आए उनके पास में, अब आप परम पवित्र हो गए हैं, आप हमारे साथ में अब वैकुंठ लोक को पधारे। उन्होंने कहा पहले आपने बातचीत नहीं किया, आप तो बातचीत कर रहे हैं, तो उस समय आपके अंदर में मलिनता थी, उस समय संसार से तो मुक्ति हो गई, किंतु अभी भक्ति आपके अंदर में नहीं थी, अब भगवान का नाम का आपने जो अभ्यास किया है, भगवान नाम जप किया है, इसलिए आपको अब यहाँ से हम वैकुंठ में ले चल रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम के बराबर इतना सहज सुगम पथ कलयुग जीवों के लिए भगवत प्राप्ति का और शांति प्राप्त करने के लिए, अपना परलोक बनाने के लिए और कोई दूसरा नहीं है। इसके तुलसीदास जी ने 9 उदाहरण दिए। बंध्या सुतबरु काही ही मारा, बांझ के लड़के को किसी ने मार दिया, इसको मैं मान लूंगा। बांझ को लड़के नहीं होते हैं, सभी कहते हैं कि इसको मार लूंगा। आकाश में ये खरहे के ऊपर में, खरहे के ऊपर में कमठ के पीठ में बाल उगाए, इसको भी मान लूंगा। कछुए के ऊपर में केस नहीं होते हैं उसके उसके ऊपर में, पीठ के ऊपर में, तभी मैं मान लूंगा। आकाश में बहुत खूब फूल खिले हुए हूँ, नव फूल आई बरु बहुबुद्ध फूला, आकाश में फूल खिल गए, इसको भी मान लूंगा, ये भी असंभव है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं इसको समय में मान लेता हूँ। हिमते अलग अनल प्रगट बरु होई, बर्फ से आग निकल जाए, इसको भी मान लूंगा। किंतु राम विमुख कोई सुख न पाए, राम के विमुख होकर के कोई सुख नहीं पा सकता। और भी अंधकार बरु रबही ने सावे, अंधकार सूर्य को निकल जाए, ये भी मान लूंगा, किंतु ये असंभव है, किंतु तभी मैं मान लूंगा। और बारी मथे बर हो ये गृत सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतर यह सिद्धांत तेल। पानी को बिलोने से भले ही घी निकल आए, और रेती को पीसने से भले ही उसमें से तेल निकल आए, किंतु भगवत भजन के बिना भव सागर को तर जाएंगे और सुख और शांति होगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए नाम की महिमा श्रीमद् भागवत में दिखाई गई है। और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लोगों को मारते काटते और क्या नहीं करते, ब्राह्मण के संतान होकर के भी, किंतु दुष्ट लोगों के संग में ऐसे बन गए थे, डकैत जैसे। अंत में नारद जी के और वाल्मीकि जी की कृपा से नाम में कुछ रुचि हुई, किंतु उनके मुख से राम राम नहीं निकलता था। नारद जी ने कहा जी भाई आप तो मार काट बहुत किए हैं, मारो मारो तो कहते हैं, तो आप ऐसा करो जब मरा मरा कहो, तो मरा मरा करने लगे। अब मरा कहते 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 उनसे राम नाम निकल आया। तो उल्टा नाम पत्र जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम अलेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार से जन्म मन माही। ऐसा कौन सा सहज पथ होगा जो सहजी रूप में नाम लेते हैं भव सागर एकदम सुख जाता है, भव सागर को आदमी पार कर जाता है। इस प्रकार से उसने ये दिखलाया। फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को उपाख्यान में दिखलाया, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। उसके पिताजी उनको धर्म अर्थ काम और राजनीति में साम दाम दंड विभेद इत्यादि में लगाना चाहते थे, भगवान का विश्वास नहीं करते थे कि भगवान नाम की कोई चीज है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि हमारा भी बल वही है, तुम्हारा भी बल वही है, कि भगवान का नाम क्यों करते हो, मैंने तो तुमको खिलाया पिलाया जन्म दिया, हमारी सेवा नहीं करता है, हमारी बात में नहीं मानता है, और तुम विष्णु का भजन करते हो, ये विष्णु कौन है, विष्णु को मैं नहीं मानता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, कुछ लोग हैं जो देखते नहीं है तो मानते नहीं। दोनों में विवाद हो गया, प्रहलाद महाराज जी ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनकी बात नहीं माना। अंत में ये विष्णु विष्णु या राम राम कृष्ण कृष्ण करते थे। मास्टरों को बुलाया, उनके मास्टर थे संडामर्क, भाई कहां से तुमने इनको सिखला दिया राम राम करना या कृष्ण कृष्ण कहना, तुमने क्यों सिखाया, तुम्हें दंड देंगे। मैंने तो सिखाया नहीं, तो किसने सिखलाया। बच्चे को पूछा तो किसने बतलाया ये राम राम, हमारे कुल का तुम कुलंगार है, हमारी बात नहीं मानता है और झूठ मूठ का ईश्वर ईश्वर भजन करता है, राम राम कृष्ण कृष्ण करता है, तुम्हें हम मार डालेंगे यदि यह ऐसा किया, तुमको किसने सिखलाया। तो उन्होंने कहा मतिर न कृष्ण परत औषत होगा, मिथोपिपद्वेत गृहपतानाम अदांत को भी विशतांतमिश पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। उन्होंने कहा भाई गृही लोग जो संसार में डूबे हुए हैं उनके उपदेश से कोई भी तर नहीं सकता है। जैसे अंधा व्यक्ति अंधे को लेकर के रास्ता खोजने के लिए चले तो दोनों गड्ढे में गिर करके मर जाते हैं। इसे जिनको आत्मज्ञान नहीं है और गुरु होने का वो अभिमान करके किसी दूसरे को गुरु बन करके और उसको भी उद्धार करना चाहे तो दोनों डूब करके मर जाएंगे, गिर जाएंगे गड्ढे में। इसलिए इन लोगों की चेष्टा करने से और जो संसार में रचे पचे हुए हैं उनकी सहायता से या खुद अपनी इच्छा से चेष्टा से भगवान के चरण में प्रेम नहीं होता है जब तक कि भगवान के भक्तों के चरण की धूलि को से अभिषेक नहीं हुआ जाए। इसलिए यदि साधु संघ वैसा मिल गया जो कि आत्मकल्याण अपना कर चुके हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, उनको उपलब्धि है, और ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए और उनके चरण की धूलि के द्वारा अभिषेक हुआ जाए, स्नान कर लिया जाए, उनके आदेश के अनुसार में चले तो भगवान के चरणों में रुचि हो सकती है, अन्यथा नहीं। कहे हमारे गुरुजी नहीं जानते हैं संडामर्क और शुक्राचार्य जी, क्या वो पंडित नहीं है? तुम पंडित हो गया, तुम्हारा प्रभु कहाँ है देखें तो? कहे हमारा प्रभु तो सर्वत्र है। अच्छा तो देखो तो हम तुम्हें मारते हैं, ऐसा कह करके कहे खम्भे में है? कहाँ खम्भे में है। अच्छा तो कहाँ है देखो तो सत्याधिधा तुम निज भक्त भाषी, तुम अपने भक्त की वचन को सत्य करने के लिए बस खंभे में जो ही गदा प्रहार किया और खंभा चकनाचूर होकर के गिर पड़ा उसी में से विराट शब्द हुआ और उसमें नृसिंह और नरम नम नृसिंहम, मनुष्य और नृसिंह नहीं बल्कि नृसिंह। अतः तुमका शरीर था कैसा मनुष्य का और इतना इसे हुआ क्योंकि वो उसने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, किसी महीने में नहीं मरू, किसी सप्ताह में नहीं मरूं, और मैं घर के अंदर में नहीं मरूं, बाहर में नहीं मरूं, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी प्राणी से पशु पक्षी से मैं नहीं मरूं। भगवान ने क्या किया उसी समय में, शाम दिन नहीं रात नहीं, और उस समय मल मास किसी महीने में नहीं, मल मास में महीने से अतिरिक्त में, घर के बाहर नहीं, भीतर नहीं, देहली के ऊपर में, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अपने जंघे पर उठा लिया उसको, अस्त्र शस्त्र नहीं, अपने नख से एक मिनट में उसके नाड़ी और सबको निकाल करके उसे मार डाला, नख से ही मार डाला। हम जितने भी बुद्धिमान हैं उनके सामने बुद्धिमत्ता का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता है, हमसे वो दो अंगुली उनकी बुद्धि रहती है अधिक। ये श्रीमद् भागवत में और जगह भी दिखलाया, जो सुदामा कृष्ण को बांध रही हैं, समस्त ब्रज की रस्सियां लाई गई, रस्सी बहुत लंबी हो गई किंतु दो अंगुल छोटी हो जाती है, फिर रस्सी जोड़ी गई दो अंगुल छोटी हो जाती है। क्यों छोटी हो जाती है? मैं भगवान को जान लूंगा, उन्हें बांध लूंगा, ये भाई संभव पर नहीं है। चेष्टा तो आप कर सकते हैं जब तक उनकी करुणा न हो, जब वो हमारे ऊपर में करुणा करेंगे और हमारा प्रयत्न होगा तभी वो बांधे जा सकते हैं और उनको पाया जा सकता है, अपनी चेष्टा से भी नहीं। इसलिए हमको ये करना है कि हमको उनके आगे दीनहीन होना है प्रार्थना के द्वारा। जब दीनहीन होंगे, जब करुणा करने का अवकाश देखेंगे तब वो करुणा होगी, तब तो वो मिलेंगे, हमारी चेष्टा से नहीं, उनकी करुणा के द्वारा ही वो मिल सकते हैं। से जानत जब देह जनाई, उनको तो वही जान सकता है जिस पर उनकी करुणा हो। करुणा तो सर्वत्र सब पर है किंतु उसको करुणा को लेने की जरूरत है। पर्वतों पर वर्षा होती है किंतु नीचे जमता है, गड्ढे में पानी जमता है, उसके सिर पर पानी नहीं जमता है। उसी प्रकार से जहाँ पर दीनता है, सहिष्णुता है, धैर्य है, जहाँ पर भगवान के लिए चेष्टाएं सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया गया है, मैं और मेरा कुछ नहीं, मैं तो भगवान का हूँ एकमात्र, यदि ऐसी भावना आएगी तो भगवान की करुणा होगा। और ऐसा यदि नहीं होगा, हम खूब बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, रूपवान हैं, विशेष करके चार व्यक्तियों को जिनको धन का अभिमान है, धन के मारे ऐंठते हैं अभिमान में, जिनको विद्या का अभिमान है, जिनको अपने रूप का अभिमान है और जिनको अपने उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान है, इनको भगवान नहीं मिलते हैं। उनको अभिमान होता है, जब अभिमान छूट जाए तो जहाँ कहीं भी हमारा जन्म हो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए देखिए जब कृष्ण का जन्म होता है, जन्म से लेकर के उनकी जो लीलाएं होती हैं, और जब हम उनके प्रति चार रूप से उनको हम प्रेम करते हैं, चास्य सख्य बात्सल्य और मधुर, प्रियतम और प्रियतम के भाव से इन चार रूप से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का राम के प्रति में दास भाव है। यदि भगवान को हम अपना प्रभु मान करके और अपने को उनका दास मान करके हम चलें तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। इससे भी बड़ी एक और चीज है, यदि भगवान को सखा मान लिया, जैसे वृंदावन में ब्रज में उनके सखा थे, उनके वो जूठे खाते हैं, उनसे कृष्ण हार जाते हैं, कंस को जरासंध को मारने वाले भगवान को तनिक भी आयास नहीं है कंस को मारने के लिए, परिश्रम नहीं पड़ा, और सखाओं के साथ में श्रीराम के साथ में वो हार जाते हैं, इसी में वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक समय भरत जी और रामचंद्र जी में कुछ लड़ाई छन गई ऐसे खेल में, और रामचंद्र जी परास्त हो गए, पराजित होकर के नीचे चले गए और भरत जी ने उनको पटक दिया। रामचंद्र जी दौड़ते हुए कैकेयी के पास में गए, कैकेयी से आज तो हमें भरत जी ने मुझे नीचे पटक दिया, और हंसने लग गए। भरत तो मैं बहुत बलवान हो गया, तो भरत जी कुछ मुख बना दिया, बोले जैसे ये हमको जीता देते हैं और अपने हार जाते हैं, वो यथार्थ में मैं जीता नहीं किंतु ये जीता करके ही बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो भगवान की तो ऐसी बातें हैं, मित्र के रूप में उनकी सेवा हो सकती है। और इसे बढ़कर के यदि कृष्ण को अपना पुत्र या राम को मान करके और हम पिता और माता बनकर के उनकी सेवा करें तो ये हो सकता है। एक जगह शास्त्र में लिखा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव तदेव सर्वम मम दिये। एक है ये भाव, किंतु उपासना में ये नहीं आता। यदि मैं पुत्र खुद हो जाऊं और भगवान को माता पिता मानूं तो भगवान मेरी सेवा करने लगेंगे। माता पिता पुत्र की सेवा करते हैं, इसलिए जैसे हमारे नंद जी, वसुदेव जी, देवकी जी और यशोदा जी ने कृष्ण को पुत्र माना, वैसे प्रकार से हम यदि उनको पुत्र माने, बाल गोपाल के रूप में उनकी सेवा करें तो एक ऐसा हो सकता है जो ये सख्य से भी अधिक बढ़कर के, और उससे भी अधिक श्रेष्ठ है यदि राधा जी और उनके अनुगत रहने वाली जो गोपियां हैं अपना सर्वस्व प्रत्याग करके लोक समाज, अपना पति का भाव, लोक लज्जा, कुल धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म सबको जलांजलि देकर के कृष्ण के चरणों में उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित हो गई। तो कृष्ण कहते हैं क्या, न पारे हम निर्वध्य संयुजान सुसाधु माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संविद साधुना। हे गोपियां, आप अपने मन से हमको ऋण कर सकती हैं, मैं देवताओं जैसी लंबी लाखों वर्ष की आयु पा करके तुम्हारे ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे लिए गृह की श्रृंखला, पति का धर्म और जितने भी हैं तुम लोगों में, यहाँ तक की लज्जा को भी छोड़ करके हमारे निकट में चली आई हमारे सेवा के लिए। गीता में हमने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मां। उसकी आप लोग प्रतिमूर्ति रूपी हो। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है गोपियों जैसा जो सब धर्मों को छोड़ करके भगवान के चरणों में आया है, तो उसको गोपियों को कैसे वो छोड़ सकते हैं। इसलिए यदि हम लोग भी समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़ करके भगवान के चरणों में शरणागत हो जाएं और इन चारों रसों में से किसी एक भाव से यदि भगवान की उपासना करें और भगवान नाम करते चलें तो सही रूप में हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, हम अजर अमर हो सकते हैं, नित्य सुखी और शांति हो सकते हैं। और परीक्षित महाराज जी को जैसे सांप स्पर्श नहीं कर सका और सशरीर ही बैकुंठ में वो चले गए, ऐसे ही हम लोगों की विगति होगी, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके हम चले जाएंगे और संसार के दुखों से है और उससे हमारा कोई संबंध नहीं रह सकता है। सुखदेव जी ये सब समझा बुझा करके द्वादश स्कंध समाप्त किया और समाप्त करके और वो चले गए। इसके बाद में सांप आया, उन्होंने अपना मन आत्मा को पहले ही अपने शरीर से हटा करके भगवान के चरणों में नियुक्त किया, सांप आया और उस शरीर को काट जैसा बना हुए शरीर को काट दिया, वो खत्म हो गया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत समाप्त हुई। श्रीमद् भागवत को यदि अच्छी तरह से समझा जाए, इसके दार्शनिक दृष्टिकोण को, फिलॉसफी को यदि समझा जाए और समझ करके इसमें उसी के अनुरूप में भजन किया जाए तो अत्यंत सहज रूप में भगवान का भजन करके हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, भगवान का नित्य सेवक है, इसलिए अपने को सेवक मान करके ही भगवान का भजन करना चाहिए। तुलसी के रामायण में भी ऐसा कहा गया है क्या कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे या अभिमान जाई जन भोरे, ऐसा ही भाव होना चाहिए। और अंत में तुलसीदास जी ने यह भी कहा काम ही नारी प्यारी जिन लोभी है प्रिय जिमिदान, तिमी नघुनाथ निरंतर प्रिय लागो बलिराम। ऐसा भाव लेकर के भगवान को अपना प्रियतम मान करके उनका भजन करते हुए चली जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आज यही तक रहे। पंचाकल्प तुभ्यश्च सुता सिंधुभ्यैश्च पतितानां पावनेभ्यो।
आज तारीख 20/4/87, आज हम लोग सीनियर वकील तेजवीर सिंह के मकान पर भागवत कथा सुन रहे हैं। आज यहीं तक रहे, अगले प्रवचन और किसी दिन सुनेंगे। आज यहीं तक रहे। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।